डॉक्टर, आरवी ठीक है ना? उसका इतना खून कैसे निकला? कोई गहरी चोट तो नहीं लगी उसे? सब ठीक है ना? शान की घबराई हुई आवाज़ डॉक्टर से जवाब मांग रही थी। डॉक्टर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, फिर धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में बोली, मिस्टर मल्होत्रा, उन्हें किसी बाहरी चोट से गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस स्थिति में वो गिरी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होना बहुत स्वाभाविक है, एंड अनफॉर्चुनेटली मिसेज मल्होत्रा को मिसकैरेज हो गया है। वहाँ अचानक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने आगे कहा, हमारे लिए इस समय सबसे अहम बात उनकी जान बचाना है। उन्हें बहुत अधिक ब्लीडिंग हो चुकी है, और अगर तुरंत सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो सकती है। हमें तुरंत डीएनसी यानी डायलोकेशन एंड क्यूरेटेज प्रोसीजर करना होगा ताकि उनकी इंटरनल ब्लीडिंग को रोका जा सके और इन्फेक्शन का खतरा कम किया जा सके। शान अभी भी शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने कुछ पल रुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक है, लेकिन इस वक्त हमें बहुत जल्दी फैसला लेना होगा। रिसेप्शन से ऑपरेशन कंसेंट फॉर्म ले आइए और साइन करके तुरंत हमें दें ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। डॉक्टर की बातें सुनकर न सिर्फ शान बल्कि बाकी सब भी शॉक्ड रह गए। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसा शान और आरवी का रिश्ता था, बच्चे के बारे में तो किसी ने गलती से भी नहीं सोचा था। सबके लिए ये अप्रत्याशित था और इस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल। सब हैरान परेशान से डॉक्टर को देख रहे थे। शान का हाल भी कुछ जुदा नहीं था। शौक तो वो भी था और इसी हैरानी में उसके मुंह से निकल गया, आप कहना चाहती हैं कि आरवी प्रेग्नेंट है? सब शान का सवाल सुनकर उसकी शक्ल देखने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, मतलब साफ था कि वो खुद इन सबसे अनजान है, और उसकी लड़खड़ाती जुबान सबूत थी कि वो खुद इस हकीकत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बाकी सब अभी कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं थे, पर डॉक्टर ने उसके भाव देखते हुए तुरंत ही उसकी गलती सुधारते हुए कहा, है नहीं थी स्ट्रेंज, आपकी वाइफ ऑलमोस्ट 3 महीने प्रेग्नेंट थी और आपको खबर तक नहीं। खैर, ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे आपको बस बताना था कि बच्चे को आप पहले ही खो चुके हैं। अगर जल्दी ही कंसेंट फॉर्म पर साइन करके आपने उसे सबमिट नहीं किया और ऑपरेशन में और देरी हुई तो सॉरी, पर फिर हम शायद ही आपकी वाइफ को बचा सकें। डॉक्टर अपनी बात कहकर वापस अंदर चली गई। शान शॉक्ड सा दीवार से जा लगा। अब भी उसके कानों में डॉक्टर की कही बात गूंज रही थी कि आरवी 3 महीने प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, उसको पता भी नहीं चला इतनी बड़ी बात का। अगर देर हुई तो आरवी को भी नहीं बचा सकेंगे। इन बातों के साथ बहुत से सवाल मन में उठने लगे कि आरवी जानती है या नहीं, अगर जानती है तो उसे क्यों नहीं बताया। आंखों के सामने आरवी के साथ बिताई रात का दृश्य किसी चलचित्र की भांति घूमने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी एक रात की करीबी से आरवी प्रेग्नेंट हो जाएगी। यही सब सोचते हुए शान का सर दर्द से फटने लगा। अभी वो होश में भी नहीं लौटा था और खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि अर्पिता जी दंदनाते हुए उसके पास आईं और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर चिपका दिया। वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। सब आंखें फाड़े उन्हें देखने लगे। खुद शान हैरान सा उन्हें देख रहा था, जबकि अर्पिता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने शान को झंझोड़ते हुए रुंधे गले से कहा, क्यों किया आपने ऐसा? अपनी नफरत में आप इतने अंधे हो गए कि अपनी ही पत्नी पर जोर आजमाने लगे? इस बदले के लिए आप और कितना नीचे गिरेंगे? शान, शर्म नहीं आई आपको अपनी नफरत तले उस मासूम बच्ची की इज्जत रौंदते हुए? यही संस्कार दिए थे हमने आपको कि अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती करें आप? शान उनकी बातें सुनकर पहले तो शॉक्ड सा उन्हें देखता रहा गया, फिर उनकी आंखों में अपने लिए नफरत और नाराजगी के साथ विश्वास टूटने का दुख देखकर शान को एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलतफहमी हो रही है यहाँ। उसने निगाहें घुमाई तो सब हिकारत भरी नजरों से उसको देख रहे थे, पर शान के पास अभी अपनी सफाई पेश करने का वक्त नहीं था, और सफाई देता तो शायद ही कोई उस पर विश्वास करता। उसने खुद को संभाला और गंभीर लहजे में बोला, ये मेरे और आरवी के बीच की बात है, हम पति पत्नी हैं और हमारे बीच जो हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। अगर आपको विश्वास करना हो तो कीजिए, वरना उसके ठीक होने के बाद उससे पूछकर अपने दिल की तसल्ली कर लीजिएगा। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चला गया। फॉर्म सबमिट होते ही आरवी का ऑपरेशन शुरू हो गया। बाकी सब वहां परेशान से बैठे और खड़े थे, जबकि शान कॉरिडोर के एकदम कोने में अकेला खड़ा था। तभी वहां रेहान आ गया। उसने शान के कंधे पर हाथ रखा। शान की पलकें हल्की सी हिली और आंखों के कोर से एक बूंद आंसू फिसलकर उसके गाल पर लुढ़क गया। इस वक्त वो कितने दर्द में था इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। शान रेहान के स्पर्श से उसको पहचान गया, पर अब भी वो उसकी तरफ नहीं मुड़ा। रेहान ने उसके कंधे पर दबाव बनाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तूने नफरत में चाहे भाभी के साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना किया हो, पर प्यार करता है तो उनसे तो कभी उनके साथ जबरदस्ती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, पर विश्वास है मुझे तुझ पर कि उसमें भाभी की मर्जी शामिल रही होगी। मैं ड्रंक था उस रात, अचानक ही शान के साथ रेहान के कानों में पड़ा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने शान को अपनी तरफ घुमा लिया और चौंकते हुए बोला, मतलब तूने नशे में भाभी के साथ? रेहान ने अभी इतना कहा ही था कि शान ने उसकी बात काटते हुए कहा, उन दिनों वेहान की वजह से आरवी डिस्टर्ब थी और मैं चाहकर भी उसको कम्फर्ट नहीं कर पा रहा था।
आरवी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उस रात मैंने बहुत पी ली और आरवी ने ऐसी बातें कहीं कि मैं उसका दर्द कड़प, मेरे नज़दीकियों की चाहत और बेकरारी देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और उस रात हमारे बीच वो सब हो गया जिससे मैं भागता आ रहा था। हम दोनों की मर्जी शामिल थी पर दिल से नहीं। आरवी विहान के दर्द से खुद को आज़ाद करना चाहती थी और मैंने उसका दर्द देखकर खुद पर से कंट्रोल खो दिया था, पर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस रात की वजह से आरवी प्रेग्नेंट हो जाएगी और ऐसे ये बात बाहर आएगी, वो भी ऐसे वक्त पर। वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से जा चुका है। ये सब कहते हुए शान की आंखें एक बार फिर नम हो गई। अपने भाई के बच्चे को बचा लिया था उसने, पर बात जब अपने बच्चे की आई तो वो नहीं बचा सका। उसके आने की खबर तक नहीं थी उसे और जब पता चला तो वो पहले ही उसे खो चुका था। शान के दर्द को समझ पाना रेहान के लिए भी मुमकिन नहीं था, पर वो समझ रहा था कि अभी शान को जरूरत है उसकी। उसने शान को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा भाभी को, बस अब तू उनके और अपने रिश्ते को नॉर्मल कर लियो, उन्हें बता दियो अपने दिल की बात, सब ठीक हो जाएगा तो दोबारा बच्चा भी हो जाएगा। शान ने हौले से अपने आंसू पोंछे फिर उससे दूर होते हुए बोला, तू जा वहां सबके पास, मैं ठीक हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लियो मुझे, किसी का वहां होना जरूरी था, इसीलिए रेहान वापस चला गया। अनुपमा जी अपने मुंह पर आंचल रखे रो रही थी। रश्मि उन्हें संभाल रही थी पर खुद उसकी हालत ठीक नहीं थी। सबकी आंखें नम थी और सबको चिंता था आरवी की, साथ साथ अमरजीत जी के लिए भी वो परेशान थे। करीब दो घंटे बाद दोनों ऑपरेशन खत्म हुए। अमरजीत जी अब खतरे से बाहर थे तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और होश आने में अभी कुछ टाइम लगने वाला था, जबकि आरवी की हालत अब भी गंभीर थी। ऑपरेशन हो चुका था, अब भी हाथ में ड्रिप लगी थी जिससे खून चढ़ रहा था उसे। डॉक्टर लगातार उसकी हालत मॉनिटर कर रही थी।
शाम को अमरजीत जी को कुछ देर के लिए होश आया जिसमें बस अर्जुन ही उनसे मिल पाया और फिर दवाइयों की वजह से वो वापस नींद की आगोश में समा गए, जबकि आरवी का होश ही नहीं आया। सब उसके लिए परेशान थे। रात को ज्यादा लोग रुक नहीं सकते थे तो अर्जुन और शान वहां रुके। दोनों खामोश थे, कोई बात नहीं हो रही थी उनके बीच। आरवी के साथ नर्स थी और शान बाहर बैठा था, पर मन तो उसका अंदर आरवी के पास ही था। देखते ही देखते सुबह के 2 बज गए। बैठे बैठे अर्जुन की आंख लग गई पर शान की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं आया। कुछ देर बाद वो उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर आरवी के वार्ड में चला आया। नर्स सोफे पर बैठी सो रही थी और आरवी मशीनों से घिरी बेजान सी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, गोरा रंग कुछ काला पड़ गया था, होंठ पर सफ़ेद पपड़ी जम चुकी थी। हाथ में ड्रिप अब भी लगी हुई थी जिससे उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। हाथ की उंगलियों में कुछ क्लिप्स लगी थी। शान स्टूल लेकर उसके हाथ बैठ गया और संभाल कर उसकी हथेली को अपनी हथेली में थाम लिया। कुछ पल वो खामोशी से उसके बेजान से मुरझाए हुए चेहरे को देखता रहा, फिर उसने उसकी हथेली को अपने थरथराते लबों से छू दिया और उसकी हथेली को अपने सर से लगाकर बैठ गया। जज्बातों का तूफान सा उठ रहा था मन में, दिल आरवी को खोने के डर से घबराया हुआ था। कितना कुछ था कहने सुनने को, पर यहाँ आरवी बेजान सी लेटी थी और उसको इस हालत में देखकर शान पल पल मर रहा था। वो कुछ देर तक यूं ही उसकी हथेली को अपने सर से लगाए बैठा रहा, फिर उठकर उसके सर से अपना सर जोड़ दिया और आंखें मूंदते हुए बोला, सॉरी, आई नो जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए ये शब्द बहुत छोटा है। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, पर प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो, मेरे वजह से ज़िंदगी से मुंह मत मोड़ो। ठीक हो जाओ उसके बाद मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगूंगी और माफ़ करने या सज़ा देने का हक सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बिना कुछ कहे तुम्हारी दी सज़ा भी एक्सेप्ट कर लूंगा। जिसमें तुम्हारी खुशी होगी वही होगा, बस तुम ठीक हो जाओ। एक मौका तो दो मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का और अपनी गलती का प्रायश्चित करने का। मुझसे खफा हो तो कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा तुम्हें, पर बाकियों को तो मेरी गलतियों की सज़ा मत दो। सब परेशान है तुम्हारे लिए। अंशु कितनी बार फ़ोन कर चुकी है कि बात करनी है उसे अपनी मम्मा से, मेरे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए वापस लौट आओ। हम फिर से सब कुछ शुरू करेंगे। मैं अब तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। बस एक मौका दे दो मुझे। आई रियली लव यू। टू बी कंटिन्यूड।